ओम शांति। तो आज से हम यहाँ जो सीरीज जो चल रही थी, आज स्वयं की जो पालना करने की कला, सस्टेनेंस ऑफ आर्ट ऑफ सस्टेनेंस, तो उसके अंतर्गत स्वयं की पालना करने की कला आज शुरू होने जा रहा है। तो उसमें हम सब बाबा के बच्चे तो जानते हैं कि हम सबको पता है दुनिया में, लौकिक दुनिया और जो भौतिक दुनिया है, उन लोगों ने तो अपनी शरीर की पालना ही अपनी पालना समझ के रखा हुआ है। इसीलिए उस पालना के लिए आज सारी दुनिया के मनुष्य आत्माएं क्या नहीं करती है, लेकिन सब कुछ करने के बाद में भी जीवन में जिस प्रकार का रिजल्ट नहीं मिलता है, अंदर से खोखले खाली नजर आते हैं। आज सारी दुनिया में सब कुछ होने के बाद में भी दुनिया डिप्रेशन में जा रहा है और सारी दुनिया के मनुष्य आत्माएं आज इतने भागदौड़, और ये सब कुछ करने के बाद में भी जो आज अशांति के शिकार बने हुए, शांति के कोई नामो निशाना नहीं है। इसीलिए आज दुनिया की सोच, दुनिया की जो विचारधाराएं हैं, तो उन्होंने अपने को शरीर समझ के रखा हुआ है। लेकिन बाबा के जो ज्ञान हम सबको मिला है, तो बाबा ने तो हम सबको इतनी अच्छी जो ज्ञान दिया है, जिसके कारण से हम सबको पता चल गया है शरीर तो सिर्फ ढांचा मात्रा है, शरीर को चलाने वाली शक्ति जो आत्मा है उसकी पालना करना संगम युग की सबसे बड़ी खासियत है। और इसी पालना के जरिए हम जन्म जन्म का भाग्य बना सकते हैं। तो बाबा ने संपूर्ण ज्ञान देकर के हम सबको पूरी 84 जन्म के लिए निश्चिंत कर दिया है। इसीलिए यह पालना जो आत्मा की जो पालना है, यो पालना के लिए ही बाबा ने इस संसार में अवतरित होकर के आत्मा की भलाई, आत्मा की उत्थान और आत्मा की चढ़ती कला की शिक्षा दी है। इसीलिए हम सब जानते हैं कि हम सब अमृत वेले से लेकर रात्रि तक जो भी मेहनत कर रहे हैं, वो आत्मा की जो आत्मा की पालना के लिए कर रहे हैं, स्वयं की पालना के लिए कर रहे हैं। इसीलिए हम आज इस सारी बातों को अनुभव करते हैं कि आत्मा की पालना हो रही है। तो हम जैसे कि आत्मा की जो स्वयं की पालना, अर्थात जैसे कि इसमें और भी कोई बातें हम जानेंगे कि स्वयं की पालना अर्थात आत्मा चढ़ती कला का अनुभव करे, और स्वयं की पालना अर्थात आत्मा अपनी स्थिति बनाती है, तो उसको कहेंगे आत्मा की पालना। आत्मा की पालना अर्थात स्वयं की प्रगति और उन्नति करने वाली आत्मा। तो दूसरी बातें हम देखा हम सब ने कि स्वयं की पालना तो हम करते हैं, कितना मेहनत करके अपनी स्थिति और अवस्था बनाते हैं, तो उसको हम समझते हैं स्वयं की पालना कर रहे हैं। लेकिन फिर स्वयं की पालना के साथ साथ दूसरा कि हम स्थिति को बचाने वाले, स्वयं की पालना अर्थात स्वयं की स्थिति को भी बचाने वाले, क्योंकि हम सबने ज्ञान बीड़ा में पढ़े हैं कि मम्मा ने बोला था कि बच्चे स्थिति बनाने के लिए तो इतना मेहनत करते हैं, लेकिन बिगाड़ने में कितना भी समय नहीं लगता है, 2-4 मिनट, 1-2 मिनट भी नहीं लगता है, स्थिति धड़ाम से गिर जाता है। तो हम सबको स्थिति बनाने में जितना ध्यान देते हैं, तो स्थिति को बचाने के लिए भी उतना ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो हम सब स्थिति बना रहे, इतना मजा आ रहा है, लेकिन बिगड़ते समय जो सजाए हमको मन में होता है, तो उसको भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। स्थिति मेरी कैसे गवाए, मैंने किस कारण से गवाए, तो उसके बारे में भी हमको फुल अटेंशन चाहिए। तो स्थिति स्वयं की पालना अर्थात स्वयं का, स्वयं की हित, स्वयं की भला, स्वयं का जो कल्याण करते हैं, उसी को कहते हैं स्वयं की पालना करने वाली आत्मा। और वो स्वयं की पालना करनी होगी तो इन सारी बातों को हमें ध्यान देना होगा। हाँ, शरीर शरीर तो नेचुरल है, क्योंकि ये सब साथ साथ में हम करते हैं तो शरीर की पालना तो हो ही जाती है, और शरीर के लिए ज़्यादा अटेंशन देते हैं तो आत्मा की छूट जाती है, तो आत्मा की कहीं ना कहीं अभला होने लगता है क्योंकि उसको खिलाने पिलाने में ज़्यादा हम लग जाते हैं ना, तो उसमें कोई सारी चीज़ें हम सबको देखने में आता है। तो इसीलिए हम स्वयं की पालना अर्थात ये सब बातों का ध्यान देंगे, क्योंकि हम सबको पता है और हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा स्वयं की पालना अर्थात लक्ष्य युक्त जीवन हो, और जिसको जिसका लक्ष्य युक्त जीवन होगा वही आत्मा स्वयं की पालना कर सकती है और समय शक्ति एनर्जी बचा सकती है। इसलिए जिसका लक्ष्य फिक्स नहीं है कि मुझे ये बनना है और ये सब बन के दिखाना है और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, इसके लिए जब तक हमारा फुल अटेंशन फुल फोकस नहीं होता है तब तक हम ढीले ढाले होकर के चलते रहेंगे, क्योंकि लक्ष्य ही हमको खींचता है। तो बाबा ने भी बोला है जैसे लक्ष्य होगा वैसे लक्षण हमारे दिखाई पड़ते हैं। तो एक बार हमने देखा था एक भाई बहुत अच्छे तपस्वी और त्यागी भाई मिले थे, योगी भाई, तो हम ऊपर के डाइनिंग हॉल में थोड़ा भोजन करके हम शाम को थोड़ा बातचीत करने के लिए हम लोग ने ठाने थे। तो वो इतना तक जजमेंट पावर उनकी थी कि लोग जो वायत में जो बातें कर रहे थे तो उनको देख करके वो हैरान हो गए। तो मधुबन में बैठ करके भी ये बातें, और बाद में उन्होंने बोला कि इनका लक्ष्य और उद्देश्य कोई फिक्स नहीं है तो देखा गया है लास्ट में तो सबके ये लक्षण दिखाई पड़ता है कि हम वायत बातों में जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लक्ष्य उद्देश्य से हम भटक जाते हैं और हम दिख भ्रमित हो जाते हैं। इसीलिए हमको ये तय करना है कि मेरा लक्ष्य क्या है और इस स्थिति के लिए और इस चीज़ को पाने के लिए मुझे क्या नहीं करना पड़े, जो भी कुछ करना पड़े हमको करना है। तो इसका मतलब यही है कि स्वयं की पालना अर्थात जिसका लक्ष्य फिक्स हो जाता है तो लक्ष्य फिक्स होने के कारण से उसकी गुण सारे जीवन में धीरे धीरे दिखने लग जाता है, क्योंकि बाबा ने भी बोला है कि लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने बैठो और आपने को देखो कि मैं कहाँ तक फूल बनाऊँ और तो ये कांटे अभी तक भी मेरे जीवन में है या कि निकल चुके हैं, इसके उनके आगे बैठने से हमको पता चलेगा मैं कितना फूल बनती जा रही हूँ मैं आत्मा। तो उसके बाद हम देखते हैं कि मैं सर्वशक्तियों से कितना संपन्न बन रही हूँ, सर्वशक्तियाँ मेरे जीवन में कितनी आ रहे हैं, और सर्वशक्तियाँ आना अर्थात हर दिन हर परिस्थिति और हर समस्याओं से हम धीरे धीरे उससे मुक्त होते जाएंगे। पहले जिस समस्या और जिस परिस्थिति में जितना समय शक्ति एनर्जी लगानी पड़ते थे अभी हमको पता चल रहा है कि उस समस्याओं के लिए हमारी शक्ति और विकसित हो रही है और उस समस्या के लिए इतना समय हमको देना नहीं पड़ रहा है, हमको पता चलता जाएगा। इसीलिए हमको सर्वशक्तियों से भी संपन्न बनना पड़ेगा। तो उसके बाद हम देखते हैं कि बाबा ने बोला है कि तुम विशेष आत्मा हो, विशेषताओं से संपन्न जीवन होनी चाहिए। तो बाबा ने तो बोला कि एक विशेषताओं के कारण से बाबा के बच्चे बने हैं, और उस सारी विशेषता हो या न हो लेकिन बाबा के बच्चों के पास एक विशेषता तो जरूर है। तो जो व्यक्ति स्वयं की गुण और शक्तियों को पहचान लेता है, स्वयं की विशेषता को जान लेता है, तो दूसरों को भी विशेषता दिखने लगता है, उसको दिखाई देने लगता है। और जिसने स्वयं की विशेषताओं को ही नहीं समझा है, बाबा ने मुझे किस विशेषताओं के कारण से सिलेक्शन किया है उसको भी अभी तक पता नहीं होगा, तो वो उस विशेषताओं के कारण से और सारी विशेषताओं का डेवलप नहीं कर सकता है, तो दूसरों को भी विशेषता न देख करके बुराइयों को देखने लग जाता है। इसीलिए हमको जो विशेषताओं से हमें संपन्न बनना पड़ेगा, जब विशेषताओं से हम संपन्न बनते जाएंगे तो फिर हम फालतू बातों में हमारा समय नहीं जाएगा। इसीलिए एक कहानी में सुनाते हैं कि वो बहुत बड़ी जो भक्तनी आत्मा थी भक्ति वाली, तो उसको किसी ने बताया कि वो व्यक्ति तो तुम्हारे साथ रहता है लेकिन इतनी अवगुण से वो भरा हुआ है, तो उसके लिए आपका क्या कहना है। तो उन्होंने क्या बोला, मेरे पास ही इतने अवगुण अभी तक है, निकल नहीं पाया हूं, अब मैं दूसरों के पीछे पड़ जाऊंगी तो मेरा भी निकलना मेरा कठिन हो जाएगा। इसीलिए दूसरों की जो बुराइयां हम जितना करते हैं, विशेषताएं हम देख नहीं पाते हैं, तो हमारे समय शक्ति संकल्प एनर्जी नष्ट हो जाता है और हम दूसरों के पीछे पड़ जाते हैं, तो उसके कारण से स्वयं का चेकिंग अटेंशन सब फोकस कम होने लगती है। इसीलिए हमको इस विशेषताओं से भी संपन्न बनना पड़ेगा। इसीलिए स्वयं की पालना अर्थात हमें यह भी देखते हैं कि हर घड़ी परिवर्तन हो रही है जीवन में, परिवर्तन युक्त जीवन हो। बाबा ने तो मुरली में बोला है कि एक घड़ी जो था सेकंड की घड़ी ऐसा नहीं होनी चाहिए, परिवर्तन दिखाई देने चाहिए। परिवर्तन अर्थात कुछ न कुछ नवीनता से गाड़ी आगे चल रही है। तो इस तरीके से हम अगर पता कर सकते हैं, चेकिंग कर सकते हैं कि मैंने परिवर्तन के अनुभव में कितना कर पा रही हूँ, तो जब तक हम स्वयं का परिवर्तन स्वयं से दिखाई नहीं देता है स्वयं को, तो दूसरे भी हमारी परिवर्तन देख नहीं सकते और उनको भी महसूस तो नहीं होगा कि ये परिवर्तन है या कल जैसा था आज भी ऐसे चल रहा है। तो इसलिए हम सबको परिवर्तन के लिए हमें उस चीज का भी ध्यान रखना होगा, मर्यादित जीवन हो, श्रीमत की पटरी पर चलता हुआ जीवन हो, क्योंकि श्रीमत की पटरी से हट करके कोई भी चीज अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर रिवर्स गियर्स लगाना हम फिर मजबूर होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पटरी से हट करके जो भी चीजें करते हैं बाबा को अर्पित करके हर काम करना है ना, बाबा को आगे रख करके हर काम करना होगा। जो भी आज हम सबको मिल रहा है ये बाबा के कारण से मिल रहा है, बाबा ने हमारी कल्याण उन्नति के लिए तो हमारी जो ड्रामा में वो चीजें डाल के रखी है, तो समय अनुसार वो चीज इमर्ज होती जाती है। इसीलिए कोई अच्छे अनुभव हो जाते हैं तो हम अपने ही नाक खड़ा करने लग जाते हैं कि हम अपने बाबा थोड़ा सा साइड हो जाता है उस समय। इसीलिए उस समय हम ये संकल्प करें कि ये सब बाबा के देन है, बाबा को संपन्न बना के ले जाना है, संपूर्ण बना के ले जाना है। हम जितना हम अपने लिए चिंता करते हैं, इससे ज्यादा चिंता तो बाबा हमारे लिए कर रहा है। तो ये संकल्प अगर हमारे पास हो जाता है तो फिर हम बाबा के हवाले हो जाते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि हर घड़ी हमें जैसे कि सफलता का अनुभव, हर पल हमें विजयीपन का नशा भी हो, विजयीपन की स्थिति हो, हर बात में हमारी जीत हो रही है और हम अंदर से इतना स्ट्रांग और शक्तिशाली बन रहे हैं, यह हमको अनुभव होने लगेगा। अर्थात स्वयं की पालना अर्थात हर पल हमें सफलता की अनुभूति होगी। तो आगे हम देखते हैं कि जो व्यक्ति सफल होने चाहता है तो उसके लिए एकाग्रता की शक्ति भी चाहिए। तो एकाग्रता की शक्ति हमारे पास में अगर है तो हम हर पल कुछ न कुछ प्राप्तियों का अनुभव करते रहेंगे। तो इसका मतलब स्वयं की पालना अर्थात एकाग्रता की शक्ति से हम संपन्न बन जाए। तो एकाग्रता की शक्ति साइंस वालों को भी जरूरत है, तो साइलेंस वालों को भी जरूरत है। साइंस वालों ने भी जो तरकीब की है दुनिया में तो एकाग्रता के कारण से किया है। तो हम भी कोई सिद्धि और निधि प्राप्त करने चाहते हैं तो एकाग्रता की बहुत ज्यादा जरूरत है, और जिसकी जितना एकाग्रता है वो उतने बाबा के करीब और बाबा के नजदीक है, और जिसके पास में इस प्रकार की एकाग्रता नहीं है, बुद्धि चारों तरफ भटकती रहती है, तो आज भी बाबा ने बोला कि टाइट करो लगाम को, तब तक मन बुद्धि भटकती रहती है तो हमारे खजाने खाली हो जाते हैं। इसीलिए श्रीमत के लगाम से उसको टाइट करो। तो एकाग्रता को बढ़ाने के लिए हम सबको एकांतवासी भी बनना पड़ेगा, अर्थात जिसके पास में एकांतवासी बनने की कला है और जिसके पास में एकांतवासी बनने की है ना समय है, और जिसको इस चीज के लिए जैसे कि चस्का लगा हुआ है तो इसके बिना वो रह नहीं सकता है क्योंकि वो जैसे कि एकांत अर्थात स्वयं के अंदर चले जाना, स्वयं को जानना, स्वयं को पहचानना, और हम उस स्थिति तक पहुंच जाते हैं कि जिसने हमको सतयुग से लेकर के कलयुग तक हाथ पकड़ के लाया है उसके नजदीक पहुंचना और उसको जानना और उसके करीब होना, तो एकांतवासी अर्थात हम अपने अंदर में जब होने लग जाते हैं तो दूसरी जगत में हमको क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो जानने और समझने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए हमको एकांतवासी बनने की भी उतनी ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए स्वयं की पालना अर्थात एकांतवासी आत्मा, तो स्वयं की पालना अर्थात उत्तीर्कालदर्शी आत्मा, जो स्वयं की पालना करना चाहता है तो उनको तीनों समय का नॉलेज होना जरूरी है। तीनों कालों का जब तक ज्ञान नहीं होता है और उस चीज़ को आगे रख करके कोई कार्य नहीं करते हैं तो उस समय पश्चाताप शुरू हो जाता है। पहले जितना समय दे करके हमने त्रिकालदर्शी बन करके उस कार्य को शुरू नहीं किया जल्दीबाजी में, जैसे कि हमने उस चीज़ को महत्व नहीं दिया, तो बाद में जब पश्चाताप होना शुरू हो जाता है तो कई समय हमारा नष्ट होने लगता है। तो त्रिकालदर्शी होकर के अगर कोई काम हम करते हैं ना तो उसके में बाबा की जिम्मेवारी हो जाती है और वो कार्य बाबा की जवाबदारी बन जाती है और उसमें बाबा आगे आ जाता है। तो इस ये भी शुरू का ही हमारे लिए टाइम निकालना पड़ता है। आगे जाके तो बहुत फास्ट गति से हम ये कर सकते हैं, शुरू में जब तक इस अभ्यास के लिए पटरी पर जब तक हम नहीं आते हैं तब तक इसके लिए थोड़ा मेहनत है। इसीलिए हम सबको त्रिकालदर्शी बनकर के इस चीज़ को भी देखने की हमारे पास में ये आदत लगाना ही चाहिए ब्राह्मण को, क्योंकि बाबा ने ये कथा कहानी नहीं सुनाया है, ये हमारे जीवन के लिए बता रहे हैं। तो एकाग्र स्वयं की पालना अर्थात त्रिकालदर्शी बनकर के हर परिणाम को देख करके कर्म करने वाला, तो फिर उसके बाद में हम अपने को देखेंगे कि मैं स्वमान से कितना युक्त हूँ, सारा दिन भर मैं स्वमान में कितना है मैं रमा हुआ हूँ, स्वमान मेरे जीवन में कितनी याद है, कितनी स्मृति में है, उसको देखने वाली आत्मा। स्वमान जिसके पास में रहता है उसके जीवन में कोई भी चीज़ों का जो व्यर्थ फालतू नहीं आ सकता है। इसीलिए जो बाबा ने बताया है कि स्वमानधारी आत्मा कभी भी अपसेट नहीं हो सकती है, स्वमानधारी आत्मा के लिए ऐसा फालतू समय बचता ही नहीं है। इसीलिए स्वमान की अगर पूंछ अगर हम दिन भर पकड़ के रखते हैं तो दिखाते हैं जो भक्ति मार्ग में भी गाय का पूंछ पकड़ने से भवसागर पार हुआ है ऐसा, ये भी हम सबको बाबा ने स्वमान की पूंछ दिया हुआ है। तो शाम को सारे दिन भर स्वमान में होंगे ना तो शाम को योग लगाना अथवा किसी भी समय बाबा की याद में हम हो सकते हैं और बाबा तुरंत याद आ जाता है, क्योंकि बाबा की जो एनर्जी है ऊर्जा है वो उसमें स्वमान में समाया हुआ है, प्रैक्टिस चलती रहे हमारे उसमें। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो स्वयं की पालना करना अर्थात संतुष्ट मणि आत्मा, तो बाबा ने हम सबको संतुष्ट मणि का जो टाइटल दिया है तो संतुष्ट मणि आत्मा कैसे बन सकती है। तो संतुष्टता के लिए भी बाबा ने बताया है कि तीन चार प्रकार के जो बाबा ने संतुष्टता की बातें बताई, तो स्वयं से संतुष्ट, परिवार से संतुष्ट है ना, स्वयं से, बाबा से, परिवार से और ड्रामा से भी संतुष्ट जो आत्मा होगी तो उसको ही कहेंगे स्वयं की पालना की हुई आत्मा। और स्वयं की पालना करना चाहते हैं तो ये सारी चीजें हमको चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं हम इस सारी बातों की चपेट में आ ही जाते हैं। सबसे ज्यादा अपसेट हम परिवार से होते हैं क्योंकि परिवार के लिए फेस टू फेस हो जाता है तो उस समय हम लगता है कि और सब तो ठीक है लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर नीचे है। तो इसीलिए हम सबको संतुष्ट मणि आत्मा अर्थात कि संतुष्ट मणि जो आत्मा बनती है तो उसके आसपास में जिस प्रकार के वाइब्रेशन वातावरण बनता है और जो भी व्यक्ति उसके करीब और नजदीक आता है उसको भी ये अनुभव होने लगता है और उसके भी जो टेंशन है तनाव है वो भी भूलने लगता है और कोई ना कोई इच्छाएं उसके मन में होती है तो इस प्रकार के माहौल नहीं बना सकते हैं और खुद ही असंतुष्ट हैं अतृप्त हैं तो दूसरों को तृप्त भी हम नहीं कर सकते। इसीलिए हमें तो संतुष्टता के जो पाठ है हमको खुद को कूट कट करके भरना होगा। तो इसीलिए फिर हम आगे देखते हैं स्वयं की पालना अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा, तो स्वयं स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात स्वयं को ही देखने वाली आत्मा। और फिर दूसरा है सतयुग से लेकर के कलयुग तक, क्योंकि स्वयं को देखने वाली आत्मा के लिए यो कितना भी घंटा कर ले हर बार नवीनता का अनुभव होता है। सतयुग से लेकर के कलयुग तक अगर हम अपने एक एक जन्म को देखते हैं और एक एक जन्म में जाकर के देखते हैं, और जब हम सतयुग में होंगे ये आत्मा वही होगी, तो वहाँ के जो अनुभव, वहाँ की जो स्मृतियाँ जब जग जाती है, तो बाबा ने बोला कि जो प्यूरिटी में आज हमें जो घमासान करना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है, तो उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, कोई झंझट नहीं होगी। वहाँ के संस्कार इमर्ज होंगे। एक बार नलिनी दीदी ने यहाँ हिस्ट्री हॉल में क्लास कराई थी मधुबन वालों के लिए, तो अभी कई साल से वो सतयुगी संस्कार को आह्वान कर रही है, सतयुगी संस्कार को इमर्ज करने का काम कर रही हूँ, और कई सारे अच्छे अच्छे पॉइंट उन्होंने वहाँ के हम सबको सुनाए थे। इसीलिए हम सबको जैसे कि सुदर्शन चक्रधारी होकर के रहना है, और ये चक्कर सारी चक्करों को छुड़ाने वाला है। दुनिया में जितने भी चक्कर है सब चक्कर को छुड़ाने वाला, इसी चक्कर में सारी दुनिया के चक्कर आ जाएंगे। इसीलिए हमें ये भी चीजें करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और स्वयं की पालना करना चाहने वालों के लिए यह तो अंडरलाइन भी है तो हेडलाइन भी। तो ये करना जरूरी है। तो स्वयं की पालना अर्थात परियोगी आत्मा, स्वयं की जो पालना करने वाली जो आत्मा होगी ना, उसको प्रयोगी आत्मा बनना पड़ेगा बाबे। प्रयोगी, क्योंकि अभी तक तो हम लोगों ने बहुत कुछ इकट्ठा किया है लेकिन उसका प्रयोग नहीं किया हम लोगों ने। जैसे कोई मालिक होता है दो चार गाड़ियां खरीद करके रखता है और उसका यूज ना करे, है ना, कुछ समय के बाद में उसका जो मशीन खराब हो जाता है। तो इसीलिए हम भी, बाबा ने हम सबको बोला कि सारे दिन भर के लिए जो हम योग करते हैं तो उसको बीच बीच में प्रयोग भी करते रहना चाहिए। अगर प्रयोग करेंगे तो याद रहेगी, और कितना परसेंट जीत प्राप्त हुआ, कितना परसेंट मुझे हार खानी पड़ी, कितना परसेंट में सफलता मिला, उसकी चेकिंग करने का भी एक अच्छा अवसर मिल जाता है। इसलिए हमको प्रयोगी आत्मा बनना पड़ेगा। तो प्रयोग करते रहेंगे तो दिन भर चुस्त फुर्त रहेंगे, और देखेंगे कि इसके बाद अभी ये परीक्षण मेरा आगे क्या होगा, दूसरी बातें आएगी तो इसको मैं कैसे देख सकता हूँ, इसको मैं कैसे ट्रीट कर सकता हूँ। तो इस प्रकार के अगर हम अलर्टनेस अगर होता है तो हमें बहुत उसमें मजा आने लगता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो स्वयं की पालना करना अर्थात कोई भी कर्मेंद्रिया हमें धोखा न दे। और कर्मेंद्रिया धोखा दे रहे होंगे तो हम समझेंगे कि स्वयं की पालना करने में कहीं ना कहीं खोट हुई है। कर्मेंद्रिया अगर धोखा दे रहे होंगे तो हम समझेंगे कि उसमें हमें संघर्ष करना पड़ रहा होता है। कभी आंखें धोखा देता है, कभी कान धोखा देता है, कभी मुंह धोखा देता है, कभी जीभ धोखा देता है, कभी इस तरीके से धोखे खा रहे होंगे तो जैसे कि हार खाने का संस्कार बन जाता है। तो समय पर हम स्थिति नहीं बना सकते, तो उसी के बहुत सारे कंप्लेंट चलते रहते हैं। इसीलिए स्वयं की पालना करना अर्थात सर्व प्रकार के धोखे से अपने को बचाने वाली आत्मा। उसके बाद हम देखते हैं कि स्वयं की पालना करना अर्थात सर्व प्रकार की बैलेंस, जो हम सब ने जो बैलेंस की जो सीरीज हम लोगों ने देख चुके हैं, तो सर्व प्रकार की बैलेंस हमारे जीवन में अगर है तो हम पता कर सकते हैं इन आत्माओं ने अपनी पालना कर ली है, और जिन्होंने स्वयं की पालना कर ली है वो दूसरों को भी पालना कर सकेंगे। तो इस प्रकार की सब प्रकार की जो बैलेंस हमारे जीवन में आएगी तो हम सर्व के दुआएं भी प्राप्त कर सकेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि निर्विघ्न जीवन जिसके पास में होगा तो हम पता कर सकते हैं इन आत्माओं ने पूरा एड़ी चोटी का जोड़ लगा करके स्वयं की पालना की है। और जिसने जिसका जीवन ही निर्विघ्न होगा और दूसरों को विघ्न हटाने में वो मददगार साबित हो सकती है। काफी साल पहले यहाँ पर एक बहन जी ने क्लास कराई थी, तो उन्होंने बोला था विघ्न क्या होता है, ऐसा सुनाई थी उन्होंने। विघ्न की भी अविद्या उनको, तो इसके कारण से उनकी सेंटर में इतनी आज फला फुला हुआ है कि इतने आत्माओं की पालना हो रही है। तो जो निर्विघ्न होगा दूसरों को भी इसी तरीके से निर्विघ्न बना सकती है। इसीलिए निर्विघ्न आत्मा अर्थात उसने स्वयं के लिए इतना फुल फोकस दिया होगा, इतनी मेहनत की होगी। एक बार संतोष दीदी भी सुना रही थी, दादी जानी किसे उस समय हम जो मिले थे पुणे में अथवा बम्बई में, सुना रहे थे कि दादी जानी की ने इतनी मेहनत करके अपनी स्थिति बनाई है कि उनको देखने में लगता था, तो आज सारी विश्व ब्रह्मांडों को निर्विघ्न बनाने के लिए है ना दादी इस प्रकार से हम सबकी पालना कर रही है। और कोई भी चीज़ अगर दादी को सुनाना होगा, अनुभव के बिना की कोई चीज़ है ही नहीं, टोटल अनुभव से भरे हुए चीज़ ही मिलते हैं दादी जाने के से। हाँ, कहीं ना कहीं लिंक होता है उस चीज़ का और उसकी प्रूफ होता है उनके साथ में। इसलिए हम सब निर्विघ्न बन करके दूसरों को निर्विघ्न बनाना, अर्थात स्वयं की भरपूर पालना की हुई आत्मा। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे कि कंट्रोलिंग पावर और जो रूलिंग पावर उसके जीवन में दिखाई पड़ेगी। कंट्रोलिंग पावर अर्थात कहाँ क्या करना है, इस सारी बातों का ज्ञान, और रूल करना अर्थात स्वयं के ऊपर जिसने रूल किया वो दूसरों के दिल पर भी रूल कर सकता है। इसीलिए स्वयं को इस हिसाब से वहाँ पहुँचाई हुई आत्मा होनी चाहिए। इसीलिए हम ये जान सकते हैं कि ये कला और ये खूबी हमारे जीवन में आ गई तो हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके जीवन में इस प्रकार की स्थिति है। तो उसके बाद में हम देखते हैं कि अकाल तख्त नशीन आत्मा, तो इस प्रकार की स्थिति अगर बनती है तो भृकुटी रूपी सिंहासन पर हम सदाई विराजमान होंगे। सोमान में आ जा गया, लेकिन यह हमारा सबसे पहला सोमान है। क्योंकि यह स्थिति और उस सारे सोमान को अगर हम आह्वान करने चाहेंगे ना तो तभी यहाँ से शुरू होगा, ये भी सीढ़ी यहाँ से शुरू होगी। अकाल तख्त पर हम बैठे नहीं और सारी सामान का यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम देखते हैं कभी कभी कोई राजा किसी भी मंत्री अथवा राष्ट्रपति किसी देश में चला जाता है, खूब उसकी खातिरी होती है, वहाँ कई सारी संधियाँ होते हैं, वहाँ सिग्नेचर होते हैं, फिर उसके देश में जब वापस आता है ना तो क्या होता है, तब तक यहाँ सत्ताच्युत हो चुकी होती है, सत्ता दूसरों के हवाले चला जा चुका होता है। तो इसका मतलब हम सार प्रकार के सामान का अनुभव तो कर रहे हैं, अपने सीट पर आने से यहाँ हड़कंप मचा हुआ तो अंदर सीट इतना स्ट्रांग होने चाहिए कि सब प्रकार का अभ्यास हो, आते समय हमारी स्थिति ऐसा न हो कि यहीं से माया चारों तरफ से खींच रहा हो। अनुभव तो बहुत कुछ कर लिया लेकिन बाद में उनको बंटवारा करके हमने स्थिति बांट दिया, हम खाली हो गए। इसीलिए ये तो हमारे उठने से लेकर सोने तक इस सिकड़ी पर आग जलते रहने चाहिए, भृकुटी रूपी सिकड़ी पर आग जलते रहने चाहिए। तो सोमान और उस सोमान तभी काम आएंगे जब यहाँ पर जल रहा होगा ना, तब और उस सब लकड़ियाँ वहाँ काम आएगी। इसीलिए इस चीज़ को हमें अंदर से ये अभ्यास करना पड़ेगा, हल्के में नहीं होगा, इसके लिए कुछ कुर्बानी देनी पड़ती, वो मेहनत मांगता है, बिना ऐसे नहीं होता है कि हम ऐसे ही कर ले, उसकी गहराई से अनुभव होनी चाहिए। तो उसके बाद में हमारा जीवन एग्जाम्पल मूर्त जीवन बन जाएगा, एग्जाम्पल मूर्त अर्थात सैंपल जीवन। किसी को भी रेफरेंस देना होता है तो उस व्यक्ति को आगे रखते हैं तो सारी समस्या और क्वेश्चन ही खत्म हो जाते कि ऐसे बनना है, ऐसा करना है। लास्ट शो फास्ट जाने वाली आत्माओं की निशानी कि उनको देख करके हमें भी कुछ करने की प्रेरणा आ जाए, उनको भी जैसे कि कुछ हमसे कुछ मिले, इस प्रकार के जीवन हो। इसीलिए हमारा जीवन जैसे कि हम जिसने स्वयं की पालना की है तो सभी लोग उसके ऊपर थोड़ा सा नज़र डाले हुए होते हैं, कुछ सीखने को और कुछ समझने को उसको मिल जाए। और इसके लिए हमारे अंदर से सदाई शुद्ध वाइब्रेशन, स्वच्छ वाइब्रेशन और सर्व की हित करने की भावना, शुभ भावना संपन्न, शुभ कामना संपन्न हम नेचुरल होंगे। उसके अंदर से इस प्रकार के कोई भी वाइब्रेशन नहीं निकलेंगे जो अकल्याण हो, जीवन ही नेचुरल जैसे कि बन चुकी है ऐसा अनुभव हम कर सकेंगे। उसके बाद हम देखते हैं जो आज भी बाबा ने बोला, जो बालक और मालिकपन का जो एक तो बैलेंस में आता है, एक होता है आज बाबा ने बोला कि मन बुद्धि को कंट्रोल करने वाली आत्मा, जहाँ मन बुद्धि, और उसमें बाबा ने हम सब ने भी देखा है कि बाबा ने कभी अनुभव किया है कि ये जाकर के मैं मिचनू बनने वाली हूँ बच्चा बन करके। और फिर नारायण का जब फोटो देखते थे तो विश्व महाराजन बनने वाला। तो इसको हम किधर भी अपने को चैनल चेंज कर सकते, कभी बच्चा बन करके तो कभी विश्व महाराजन बन करके, इस प्रकार के अपने को किसी भी स्वरूप में हम अपने को टिका सकते हैं। तो उसके बाद में हम देखते हैं कि इस प्रकार की सब कुछ करने वाली जो आत्मा होगी वो निर्भीक होगी, वो निर्भय होगी, निडर होगी, वो बेफिक्र बादशाह स्थिति में होगी वो आत्मा। इसीलिए स्वयं की पालना करना अर्थात निर्भीक आत्मा, निर्भय आत्मा। तो इस स्थिति से हम पता कर सकते हैं कि अंदर में किसी प्रकार का भय नहीं है। एक सेंटर में हमने देखा था और सुना भी था कि सेंटर किराए पर लिया गया था और लोगों ने उतना नहीं बताए। उस किराए लेने के बाद में लोग क्या बोल रहे थे कि यहाँ इस घर में दो व्यक्ति का जैसे कि सुसाइड हुआ था, अब ये ब्रह्म कुमारी वाले क्या करेंगे, क्या हालत होगा इनका। लेकिन वो बहन जी इतना निर्भीक थी, तो रात को 12-1 बजे वो आत्मा है ना ट्यूबवेल चलाने के लिए आती थी, हैंडपम्प। तो बहन जी में इतनी पावर थी कि उन सभी आत्माओं का कल्याण कर दिया। दोबारा कभी उन्होंने चेहरा नहीं दिखाया रात को। इतनी ताकत, निर्भीक इतना कि कोई डर ही नहीं। नहीं तो लोग तो बोरी विस्तार समेट लेते, किसी दूसरी जगह पहुंच जाते। तो इसीलिए तो स्थिति थी उनकी। तो आज उस सेंटर भी इतना फला फूला है कि सब जोनल हेड का भी उतना नहीं होगा उनके सेंटर की हालत, इतनी बनाई उन्होंने। इसीलिए निर्भीक जीवन होगा, अंदर में किसी प्रकार का खोट नहीं होगा, कोई प्रकार का डर होगा, भय होगा, तो स्थिति हमारी नहीं बन सकती। तो ये सारी बातें तो हम सब ने स्थिति जो स्वयं की पालना करने वाली आत्माओं की निशानी देखे। तो अभी स्वयं की पालना करने में विघ्न रूप क्या क्या हो सकते, ये भी तो है ना। तो स्वयं की पालना करने में जो विघ्न रूप होंगे वो सभी बातें, जैसे कि हमको इस स्थिति तक पहुंचने नहीं देता है, वो हमारा क्या है, अपने निजी संस्कार होते हैं, जो छिपे हुए संस्कार होते हैं, पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, और कभी जानबूझ के बनाए गए संस्कार होते हैं, वो हम सबको ये स्थिति तक पहुंचने नहीं देती है। और कभी ये देह के संस्कार भी हमको ज्यादा समय शक्ति एनर्जी नष्ट कर देता है, और देह के लिए हम ज्यादा अटेंशन देने लगते हैं। इसीलिए ये स्थिति में पहुंचने के लिए स्वयं के रिजर्व संस्कार को चेक करना होगा जो हमें दुख दे रहा है। तो उसके बाद में पूर्व जन्म के संस्कार कभी कभी ऐसे फाइट करते हैं, पता ही नहीं चलता है कि इस चीज कहाँ से आई, किस लिए आई, क्या करने के लिए आई, उसको कैसी जो परिस्थिति और समस्या इसमें इसको मैच खा गया, वो आके शूट करेगा फिर ही गायब हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसे जन्म के संस्कार भी होते हैं, इसीलिए हमको उस चीज के ऊपर भी पूर्ण ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इस चीज को जब तक हम चेक नहीं करते कहीं ना कहीं हमको वो घायल करके रख देगा। इसीलिए हम इस चीज को भी देखेंगे। और भी बातें हैं कि जैसे प्रकृति से आने वाली जो समस्याएं होते हैं ये भी हमारी स्थिति को इष्टम बनाने नहीं देता है। प्रकृति में जैसे कि परिवर्तन, जैसे कि माहौल चेंज, वातावरण चेंज, बारिश का समय होता है तो बोलेंगे कि थोड़ा सा बारिश खत्म हो जाए तब तपस्या करेंगे, और कभी फागी आता है तो मधुबन जाने, कहीं भी कहीं के लिए भी हो सकता है कि उसको बहाना बना करके हम अपने को थपथपाते रहते हैं कि हो जाएगा कभी इस तरीके से। इसलिए जो और भी बातें हैं कि जो वातावरण वायुमंडल जो परिस्थिति से आने वाली समस्या, वातावरण वायुमंडल माहौल से आने वाली जो स्थिति है वो भी हमको कभी न कभी दुखी करता है। और उसमें सबसे ज्यादा होते हैं नाम रूप की बीमारियां, और हमको उसमें शक्तिशाली होने नहीं देता है, क्योंकि हम उसके चपेट में आ जाते हैं, क्योंकि सभी की स्थिति एक जैसे नहीं है और सभी पुरुषार्थों में लगे हुए हैं। इसलिए अंदर की जो बीमारियां हमने पाल के रखी है और बाहर की जो बीमारियां सबसे ज्यादा उसको पकड़ लेता है, इसीलिए हमें इसको भी देखना होगा। और उसके बाद में हम देखते हैं कि जैसे कि परिवार से आने वाली समस्याएं ये भी हमको स्ट्रांग होने नहीं देती, शक्तिशाली बनाने नहीं देती है। और हमने कैसे बैलेंस बना के रखा है, या तो बैलेंस सभी डमाडोल करके बैठे हैं तो उनके संकल्प उनके विचार भी हमारे ऊपर आते रहते हैं। इसीलिए हम सबको इस परिस्थिति से कैसे निपटना चाहिए इसको पहले से हमें तय करना पड़ेगा। और उसमें एक चीज यह है कि जिसकी लौकिक प्रॉपर्टी ज्यादा है तन तो तन समर्पित कर दिया लेकिन मन और धन नहीं किया होता है, क्योंकि तन करने के बाद में मन कहीं ना कहीं उसी चीज में चक्कर काटते ही रहता है। तो उसके कारण से भी कई सारे आत्माओं को देखा गया है कि अपनी प्रॉपर्टी के कारण से कहीं लड़ाई हुई, कहीं झगड़े हुए, कहीं केस कचहरी अदालतें हुई, तो उसके कारण से उसमें जैसे कि मन के अंदर ऐसे अपनों के प्रति दरारें पैदा हो जाती है कि हम उसके पीछे पड़े रहते हैं। स्थिति कहाँ चली जाती है, स्थिति कैसे बनानी, सब बातों से मुक्त हो जाते। इसीलिए इसके ऊपर में हमें थोड़ा सा फोकस करना ही पड़ेगा। और उसके बाद में हमने जीवन भर जो भी अच्छे बुरे कर्म किए हैं उसको भगवान के आगे स्पष्ट नहीं किया है, स्पष्ट नहीं किया है, उसके कारण से भी स्थिति बनाने में बड़ा मुश्किल हो जाती है। उसके बाद में जो लौकिक पढ़ाई जो विद्या है वो भी हमको कभी कभी इस स्थिति बनाने में विघ्न रूप बन सकता है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि जो हमने कोई व्यक्ति बाबा बोलते हैं ना कभी कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, वो अपने को दिलासा देना शुरू करते हैं। और कभी अच्छी स्थिति का अनुभव न हो पाने से स्थिति बनाना भी है कभी समझ में नहीं आती है। इसलिए इसके ऊपर भी हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो कभी कदा ऐसा भी होता है किए गए पाप और कर्म बुद्धि में बार बार आती है, न भूल पाते न छोड़ पाते हैं, और उसको बार बार हम रिपीट करते रहते हैं। तो उसके बाद में हम देखते हैं कि किसी का साधारण स्थिति में रहने का ही संस्कार बन चुका है, स्थिति बनाने की कोई ध्यान ही नहीं रहता है, साधारण स्थिति, और कुछ रिस्क लेकर के स्थिति बना लो ऐसा सोचे नहीं होता है। तो उसके कारण से भी हम अपनी स्थिति को स्ट्रांग नहीं बना पाते। उसके बाद में हम देखते हैं कि जैसे कि आज का जो सामाजिक संजाल बोलते हैं सोशल नेटवर्क, ये सबसे बड़ा जंजाल है। और इसमें जो ज्यादा लिप्त है वो स्थिति और अपनी अवस्था नहीं बना सकता है। इसीलिए हम सब इस सारी बातों को ध्यान में रखते हुए स्वयं की पालना करके अपनी स्थिति को स्ट्रांग बनाए, शक्तिशाली बनाए, पावरफुल बनाए, ये हमारी लक्ष्य है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस शरीर को चालू किए हैं भाई साहब ने। इसीलिए हमको इसमें थोड़ा फोकस दे करके जो चिंतन किए थे हमने आप सबके आगे शेयर किया है। ओम शांति।
शिव का मित बना।